أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ سوائے ان کے جو اب تک ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا تو تم ان کی کاروائیوں پر غم نہ کھاؤ، اور تم ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے حق میں ہم سے کوئی گفتگو نہ کرنا، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح کشتی بناتے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ہنسی کرتے تو وہ کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آیا چاہتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت
تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن معه الا قليل.
یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو نر مادہ کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی باستثناء اس کے کہ جس پر ہمارا حکم ہو چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الکریم وصدق المهدی المعود العظیم. سیرت حضرت بندگی میاں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم اور بدل ذاتی امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. بندگی میاں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیش بہا بشارتیں دی، کہیں پہ جو ہے آپ کو ابوبکر ثانی فرمایا، کہیں پہ آپ کو جو ہے اسد اللہ غالب الولایت مصطفیٰ فرمایا. ایک خاص بشارت کے ساتھ آج نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را مصحف دادی بندہ را چی دادی، یعنی اسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ الہی تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، بندے کو کیا دیا؟ فرمان شد اے محمد تیرا بدلے مصحف، یعنی فرمان آیا کہ اے محمد، یعنی میں اسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے سید محمد تیرا بدلے مصحف تجھے قرآن کے بدلے سید خنمیر را دادیں، یعنی تجھے قرآن کے بدلے سید خنمیر عطا کیا گیا. دیکھیے بندگی میں سنے شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ذات وبرکت کی بے نظیر بشارت ہے. قرآن کریم کی طرح آپ کی ذات ہدایت مجسم ہے، آپ کی ذات میں جمیع صفات حسنا جو قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی ذات مبارکہ میں ہیں. اسی لیے جو ہے آپ کو یہ خاص بشارت دی گئی، یہ بے نظیر بشارت ہے جو بندگی میں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کی. آگے بڑھتے ہوئے یہ بشارتوں کی تفصیل میں نہیں جاتے، بشارتوں کے پیچھے جو ایک ایک باب ہے سیرت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، کل تک کی نشست میں ہم نے سنا تھا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد واپس گجرات تشریف لانا، گجرات میں دو تین جگہ آپ نے جو ہے الگ الگ پہلے دائرے باندھے۔ یاد رکھیے 20 سال میں آپ نے جو ہے 20 سے 22 مرتبہ جو ہے الگ الگ علیحدہ علیحدہ جو ہے دائرے باندھے ہیں۔ تو آپ نے دو تین دائروں کی اپنے کل کی نشست میں جو ہے گفتگو سنی، کامل پور اور اس کے بعد پیرا پٹن کی جو ہوائی میں جو آپ کے آؤٹسکٹس میں علاقے میں دائرہ تھا، اس کے بعد سلطان پور میں آپ نے جو ہے رانا کانتا کا ایک عجیب واقعہ آپ نے سنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے پھر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے جو ہے اپنا چوتھا دائرہ بندر جیل کے مقام پہ آپ نے باندھا ہے، یہ گجرات کے باہر آتا ہے یہ علاقہ۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کافی سخت آزمائش بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ہے دائرے والوں پہ ہوئی۔ یاد رکھیے فاقے کی آزمائش سخت ترین آزمائش ہے، آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کے اوپر پتھر برسا سکتا ہے، ظلم ستم کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جو سخت ترین آزمائش ہے وہ فاقے کی یعنی بھوک کی آزمائش ہے، اس میں انسان انسان کو کھا جاتا ہے، اتنی خطرناک اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کی ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے ابراہیم ہم تجھے نمرود کی آگ سے آزمائیں گے مگر فخر کی آگ سے نہیں آزمائیں گے۔ پھر السلام نے عرض کیا اے میرے خدا نمرود کی آگ سے زیادہ سخت و فخر کی آگ ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری عزت میرے جلال میرے بلند و برتر مقام کی قسم میں نے تمام کائنات میں فاقے کی آگ سے بڑھ کر کوئی اور چیز شدید ترین مشکل ترین اور سب سے زیادہ تھکا دینے والی پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب فرمان یاد کیجیے یہ اس سے بڑھ کے جو ہے اللہ نے اپنی قسم کا کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے جو ہے شدید ترین مشکل ترین چیز جو ہے تھکا دینے والی چیز جو ہے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ تو جتنی بڑی آزمائش اور اس میں کامیاب ہونے والے کے اوپر اتنا بڑا ہے، تو یہ آزمائش جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام صحابہ مہدی تابعین تبع تابعین حال تک جو ہے ہمارے گروہوں میں فاقے کے واقعات ہم سنتے آئے ہیں حال تک۔ اللہ نے شاید اب یہ نعمت اٹھا لی ہے، کہیں پہ اگر جاری ہے تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ دائرے پہ بندر جیل کے مقام پہ اتنا سخت فقر و فاقہ گزرا، کہا جاتا ہے کہ حالانکہ اس وقت غلہ نہایت سستا تھا، اس وقت کی جو ایک درہم ایک جو پیسہ تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے 5 سیر چاول جو ہے آ جاتے تھے آسانی سے، 3-4 کلو جو ہے چاول آسانی سے آتے تھے۔ اس کے باوجود بھی فقر و فاقہ اتنا تھا کہ روز روز جو ہے کئی دس دس میتیں ہوتی، یہاں تک کہ جو ہے ایک ہی اسی دائرے کے ایک مقامی پہ جو ہے 450 فقراء کرام جو ہے جامع شہادت نوش فرما گئے، 450 فقراء کرام جو ہے فاقے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب دیکھیے شریعت کا جو حکم ہے فاقہ جب ہوتا ہے تو 3 دن کے فاقے کے بعد جو ہے آدمی کے اوپر جو ہے حرامی چیز جو ہے حلال ہو جاتی ہے، یعنی وہ کچھ بھی جو حرام چیز ہے وہ بھی جو ہے کھا سکتا ہے۔ لیکن دین جو ہے حقیقت میں عظیمت کا نام، جو مہدی اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس پہ جو ہمارے بزرگ دین پورا اترے ہیں کہ دیکھیے اب فاقہ اپنے اوپر 3 دن سے زیادہ یا کئی دن گزر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے انتقال کر جانا، یعنی فاقہ اتنا شدت اختیار کر جانا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اب اس کے باوجود بھی جو ہے باہر نکلے نہیں، مانگے بھی نہیں، حالانکہ اب اس کے بعد جو ہے مانگ بھی سکتے ہیں لیکن وہ رخصتی پہلے، یعنی کسی غیر خدا کے ساتھ جو ہے آپ سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا یہ بھی نہیں کیا، دائرے کے اندر 10-10 روز 12-12 روز کے بعد جو ہے انتقال کر جاتے، یہ تو جو ہے آزمائش تھی، لیکن اس کے اوپر اور بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کے سامنے ان کے بچے انتقال کر جاتے، یہ اور خطرناک آزمائش جو ہے اللہ والوں کے اوپر جو ہوئی، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کی مرضی پر پورا راضی تھی پورے اطمینان کے ساتھ۔ تو ایک واقعہ یہاں پہ خاص واقعہ آیا ہے کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ دائرے میں ایک بیوی، بعض روایتوں میں کہ وہ بیوی جو ہے بندگی میاں ہی کی جو ہے ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن بیوی خنزہ بوبو تھی، تو جو ہے وہ بیوی اپنے عاقل اور بالغ یعنی بڑے 7 لڑکوں کے ساتھ ترک دنیا کر کے دائرے میں آ کر قیام پذیر ہو گئی تھی۔ فخر و فاقے کی شدت اور استرار کے بعد 7 سعادت مند لڑکے ایک کے بعد دیگر واصل بہق ہونے لگے، ایک کے بعد دیگر بچے جو ہے انتقال ہو گیا، 7 کے 7 بچوں کا جو ہے بیوی کے انتقال ہو گیا۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ تشریف لاتے اور تعزیت ادا کرتی، 7ویں مرتبہ تعزیت ادا کرنے کے بعد بندگی میں نے پوچھا کہ ہمشرے جان میری بہن تمہارے یہ لڑکے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں تو تمہیں کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بیوی موصوفہ نے جو ایک لائق اور برگزیدہ مرد جیسی تھی عرض کیا کہ میاں جی ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ جو کوئی فخر و فاقے میں اپنی جان معشوق حقیقی یعنی خدائے تعالیٰ کو دیتا ہے تو دیدار خدا سے مشرف ہوتا ہے، गुजरात के लड़कों के मशहूर खेल सरासर बैल जैसा ये मामला हमें नज़र आता है, जैसे कोई किसी को एक लकीर के पीछे से लिया और दूसरी लकीर के उस पार पहुंचा दिया। बस इसी तरह हर एक मिसाल यानी हर एक इंतकाल करने वाले का हाथ मियाँ जी यानी बंदगी मियाँ पकड़ते हैं और दूसरा हाथ खुदा तआला अपनी कुदरत के हाथ थमा देते हैं। इस तरह इस दुनिया को दुनियाए पानी की लकीर से निकाल कर आखिरत की हयात जाविदानी की लकीर के उस पार पहुंचा देते हैं। खुदा तआला उसको अपनी राह में कबूल कर लेता है और नेमत दीदार के साथ उसको आली मरतबे बुलंद दर्जे अदा किए जाते हैं। तो बीबी ने जो है ये तकरीर बयान की है कि बंदगी में जो है सातवें बच्चे के इंतकाल का फरमाया कि हमें तो जो है बड़ा आसान मालूम हो रहा है कि जो है जो आपके सामने इंतकाल कर जाते हैं वो बड़ी आसानी के साथ पार हो जाते हैं, खुनकार इस हाथ से देते हैं और खुदा तआला जो है उस हाथ से जो है कबूल कर लेता है। साथ ही साथ फाकिर के ऊपर इतनी आजमाइशें होने लगी और कितना बुलंद मुकाम था, देखिए बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये अल्लाह वाले अल्लाह के करीब कितना होते थे कि बंदगी मियाँ के दिल में ये एक ख़तरा आया ख्याल, हम हमेशा जो है खतरात में रहते हैं, वसवसे खतरात में। बंदगी मियाँ फरमाते हैं कि मुझे 20 साल में सिर्फ 7 मरतबा जो है ख़तरा आया है, यानी ख्याल आया है अपनी तरफ से खुद ही का, तो एक ख़तरा आया है बंदगी मियाँ। उस पर जो है बाद में नादिम हुए फ़ौरन कि जो है बंदगी मियाँ फरमाते हैं कि मेरे आपके दिल में जो है ख्याल आया क्या खुदा दायरे के भाइयों पर फ़ख्र फाके की सख्त मशक्क़त गुजर रही। बहुत ज़्यादा जब फ़ख्र फाका हुआ तो ख़तरा आया दिल में, ख्याल आया कि सख्त फ़ख्र फाका गुजर रहा है। उसी वक्त खुदा तआला की तरफ से गैबी आवाज़ आई कि सैयद कुनमीर अगर तू कहे तो हम बंदर जेवल के तमाम दरो दीवार सोने की कर देंगे, तो ये सब उन पर खर्च कर दे और क़यामत के दिन हम इसका हिसाब थोड़ा भी तुझसे ना लेंगे, यानी जो है बेहिसाब सुनाया माल जड़ देंगे। बंदगी मियाँ ने फौरन नहायत आजीज के साथ अर्ज़ किया कि खुदाया ये खतरे बंदे की तकसीर थी, इन्हें तेरी ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने फजल करम से इन्हें अपना मुखरिब बना और दीदार अता फरमा। इस तरह जो है ये लोग अल्लाह की रज़ा पे राज़ी थे कि अगर अल्लाह भी कह रहा थे अल्लाह ये आजमा रहा है कि अगर तुम कहो तो तमाम दरो दीवारों को जो है सोने चांदी की कर दो और उसे जो है खर्च करो और उसका हिसाब भी ना लिया जाए। यहाँ पर अगर यानी फौरन आदमी मुल्तफी हो जाए उस तरफ कि अल्लाह हिसाब भी नहीं लेने वाला है तो थोड़ा सा उसकी तरफ से हटे ऐसी बात हो, तो फौरन बंदगी मियाँ ने कहा कि जो है ये खतरा जो है बंदे की तरफ से था, इसके ऊपर जो है मैं नादिम हूँ, हमें जो है सिर्फ तेरी ज़ात के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। इतना जो है अल्लाह ताला की जो है मर्जी पे राज़ी थे। और तो और देखिए बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला के मामू बंदगी मलिक हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी जौजा बीवी बुआ मरियम और बीवी मन्ना का भी मशहूर वाक़िया है। आप इससे पहले भी सुने हैं कि बाड़ीवाल के ख़ानदान वाले बहुत बड़े अमीर घराने वाले थे, ऐसा नहीं है, मैं इस्लाम के घराने वाले बहुत बड़े अमीर लोग थे। आज भी इनकी हवेलियाँ वगैरह जो आसार दिखते हैं बहुत बड़े घराने वाले थे, अल्लाह ने इनको वहाँ से ला के बताया है कि देखो वहाँ पे भी कैसे थे और यहाँ पे फ़ख्र फाके की हालत में भी कैसे थे। ऐसे नहीं कि गरीब घराने से आओ और फिर गुरबत में रहे और इंतकाल कर गए, बहुत बड़े घराने के थे। हज़रत बंदगी मलिक हम्माद रज़ी अल्लाह तआला और आपकी जौजा भी बहुत बड़े घराने की थी। तो ये जो दोनों ने ख्याल किया, दोनों को अल्लाह की तरफ से जो है अल्लाह ने दिल में बात डाली और दोनों ने जो है तर्क दुनिया करके बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला की जो है दायरे में आए और वहीं पर जो है इक़ामत पज़ीर हुए। यहाँ पर फ़ख्र फाका बढ़ने लगा, बहुत नाज़ो नाज़ से जो है बीवी पले हुए थे बंदगी मलिक हम्माद रज़ी अल्लाह तआला की जौजा, बहुत बड़े घराने की थी। जब फ़ख्र फाका बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया और इंतकाल होने लगे, बंदगी में आपस के खेत में जो है खरीक के खेत में दफनाने भी लगे, ये बात मशहूर होने लगी उखरा इकराम के इंतकाल कर जाने की, तो बीवी बुआ मरियम जो बंदगी मलिक हम्माद की जौजा है उनके वालिदैन को मालूम हुआ, उनकी वालिदा को और भाई को, तो फ़ौरन उन्होंने जो कुछ के बीवी का जो सामान उनके घर पर था, जवाहरात वगैरह जो उनके जो जेवर वगैरह थे, खाने पीने का सामान ऊँट के ऊपर जो है भर दिया गया और जो है उनकी दाया के हाथ से जो है बंदगी में और उनके दायरे को जो है लीला भिजवाया गया बीवी के पास। तो दायरा देखिए दायरे के पास जो है वो दाया वो काम करने वाली जो बचपन से जो है बीवी को जो है पाला पोसा था और जो है जानती थी अच्छी तरह से। अब उसके बाद जो है बीवी जो है शादी होकर जो है ब्याह दी गई और उसके बाद जो है तर्क करके यहाँ पे आ भी गई, अगरचे कि जो उस वक्त माँ बाप जो है राज़ी नहीं थे बीवी के और बंदगी मलिक हम्माद के तर्क दुनिया करने से। ये लोग भाग के बंदगी मियाँ के दायरे में आए, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। इनके पीछे जो है फौज भी भिजाई गई थी, इनके वालिदैन की तरफ से लोग भिजाए गए थे सिपाही वगैरह, लेकिन ये भागते हुए जो है बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है दायरे में आए। इतने देखिए अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी थे, तो वो दाया जो है ऊँट लिए हुए सामान लिए हुए जो है दायरे के पास पहुँची, पता पूछते हुए जो है बंदगी मलिक हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है घर के पास भी पहुँच गई, वहाँ पे जो है दस्तक दी गई और बीवी बुआ मरियम जो है सामने है, लेकिन दाया ने बीवी को पहचाना नहीं। फ़ख्र फाके से हालत ऐसी हो चुकी थी कि दाया ने जो बचपन से बीवी को नाज़ो नियाज़ में पाला गया था बीवी को देखा और पहचाना तक नहीं, और बीवी ही से पूछ रहे हैं कि बुआ मन्ना का जो है यहाँ पे घर कहाँ पे, उन्हीं से पूछ रहे हैं कि जो है वो अमना का घर कहाँ पे। तो बीवी पहचान गई दाया को और फौरन बीवी ने मुस्कुरा दिया। जो ही मुस्कुराना था वो दांतों को देखा और दाया पहचान गई और जारो खतार रोने लगी और बीवी को जो है गले से लगाया और फौरन चाहती थी कि सामान सारा उतारें जो खाना वगैरह लेकर आए थी वो जो है तमाम का तमाम उसी वक्त में खिला दें। लेकिन बीवी उसी वक्त ने कहा कि हमने देखिए बीवी की क्या बड़ी बात है, आपने जो है उनको समझाया तफहीम की और कहा कि रोने की बात नहीं है, ये सब कुछ हमने अल्लाह की खुशनुदी और रजा जोई उसकी मोहब्बत और उसके इश्क में उसके तगरुब और दीदार की खातिर अपने दिलो जान से कबूल किया है। यानी जो कुछ के मशक्क़त और हो रही है हम पे तकलीफ दारी जा रही हमने दिल से इसे कबूल किया है, वो दिल और जान से इसे अल्लाह के दीदार की खातिर कबूल किया है। तो वो ज़रा संभली, उसके बाद चाहती थी कि जल्दी जो तोशे वगैरह लाए हैं खाना खिलवा दिया जाए। लेकिन जो है बीवी ने कहा कि जब तक कि मलिक हम्माद नहीं आ जाते बगैर उनकी इजाज़त के जो है मैं नहीं खाऊंगी। बंदे की मलिक हम्माद रजी अल्लाह तआला आए वो तमाम का तमाम सामान जो है बीवी ने कहा कि ये अल्लाह ने आपको दिया है। बंदगी मलिक हम्माद वो खुद नहीं खाए, तमाम का तमाम सामान वगैरह जो कुछ के आया था पैसे वगैरह जेवरात वगैरह भी थे उसके अंदर, वो तमाम का तमाम जो है अपने मुर्शिद बंदगी में शेख खुदमीर रजन के पास ले गए और कहा कि ये आपको अल्लाह दिया है। उसी में से बंदगी में रजन जो है बंदगी मलिक हम्माद को एक हिस्सा दिया और बाकी तमाम हिस्सा कुछ एक हिस्सा जो है अपने पास रखा हज के वास्ते। इसी पैसे से जो है जो अल्लाह ने दिए थे यहाँ पे बंदगी में जो है हज किया है उसकी भी तफसील बताया तो आप आगे सुनेंगे। फिर बाद में जो है तमाम का तमाम सवियत कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ये बंदगाने खुदा एक दूसरे के ऊपर जो है वारे जाते थे, पकड़ो पाका चल रहा है। आप देखिए शिद्दत की भूख है, अल्लाह जी आ चुका है उसी वक्त पे उसके ऊपर कूद नहीं पड़े खा नहीं लिए। पहले जो है अपने मुर्शिद को पहुंचाया गया, बीवी ने जो है पहले अपने शौहर को पहुंचाया, शौहर ने जो है पहले अपने मुर्शिद को पहुंचाया, तमाम दायरे के फुकराए कराम खाए। उसके बाद जो है ये मियां बीवी जो कुछ के बटके इनके पास आया था वो जो है इन्होंने खाया है। अलगरस यहीं पे फखर पाके की वजह से ये हालत हुई है। इतना शिद्दत का फखर पाका था कि जो है बंदगी में रजी अल्लाह तआला फखर पाके से जो इंतकाल कर जाते उनको जो है पास ही के दायरे में जो है दफनाते चले जाते। यहाँ तक कि जो है वो खेत वाले ने आके जो है बंदगी में रजी अल्लाह तआला जो है शिकायत की कि आप लोग जो है हमारी पूरी ज़मीन को जो है कब्रस्तान बना के रख दिए हो कि अपने फुकराओं को जो है रोज़ाना यहाँ पर जो है दफन करते जा रहे हो। तो उस वक्त बंदगी में रजी अल्लाह तआला ने जो है उस आने वाले शख्स को जो है आपने ये कहा कि जाओ और जो है खबरें खोदो और लाशों को निकाल कर फेंक दो। तो वो फौरन गज़ब की हालत में था, गया और जो है वहाँ पे खबरों को खोदने लगा, देखा कि जो है ना लाश है ना लिफाफा है, कफन तक मौजूद नहीं, उसके सामने जो है दफनाया गया है, रोज़ाना जो है दफनाया जा रहा है। हैरान हुआ आके जो है फिर बंदगी मियां रजन के पास जो है मामला अर्ज़ किया। तो बंदगी मियां ने इरशाद फरमाया कि जो लोग राह खुदा में इस तरह जान देते हैं ज़मीन की ताकत नहीं कि उन्हें अपनी आगोश में रोक रखें, उनको बंदा इस हाथ देता है और खुदा साथ लेता है। तो बंदा इस हाथ देता है, ज़मीन की ताकत नहीं है। देखिए ये ज़मीन में जो जिस्म सड़ता पड़ता है वो आम मोमिन का होता है। जो बंदगाने खुदा जो ज़िंदगी में सरापा नूर बन गए उसको ज़मीन क्या खाएगी, जिनका जो है रूह जिस्म रूह एक हो चुका वो इस हाथ देते बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला और उस हाथ से जो है खुदा तआला उठा लेता। ये जो है बंदगी में उनके जो है फ़ुकराए किराम की शांति। एक फ़कीर के वाक़े के साथ जो है आज की नशस्त का अख्ताम किया जाता है, इंशाल्लाह कल जो है आगे की तफसील सुनाई जाएगी कि बंदगी में उनके इसी मुकाम का वाक़ है। इसलिए जो है आज की नशस्त में कहा जा रहा है कि बंदर जेल ही में एक बूढ़ी औरत हज़रत सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला की जो है खिदमत में आई, एक अनजान औरत थी, और अर्ज़ किया कि उसका लड़का कई बरस से गुम है, आप अगर दुआ फरमाएंगे तो वो जल्द मुझे मिल जाएगा। तो आके अर्ज़ किया कि जो है कई साल हो गए बच्चा गुम गया है, अगर आप दुआ करेंगे तो बच्चा मिल जाएगा। तो बंदगी में रज़ी जो है उधर दूर ही में सामने जो है आपके एक हज़रत इब्राहिम शेखा एक फ़कीर थे, उनकी तरफ इशारा किया कि जाओ जाके उस फ़कीर से कहो, शेख इब्राहिम शेखा से कहो। तो बूढ़ी जो है हज़रत के पास आई और अर्ज़ किया कि जो है बंदगी मियां रज़ी अल्लाह तआला से जो कहा था, बंदगी मियां फरमाया कि उस फ़कीर इब्राहिम के पास जाओ और अपना हाल सुनाओ। बस वो औरत गई और जो है हाल सुनाया। तो मियां शेख इब्राहिम शेखा ने अर्ज़ किया कि जब ख़जाने के मालिक का हुक्म है तो कुंजी वाला क्यों बखीली करे, यानी जब ख़जाना देने वाला जो है राज़ी है, मेरे पास तो सिर्फ कुंजी है, मैं क्यों बखीली कहूँ। सिर्फ कहा कि जा तेरा लड़का तुझे घर में मिल जाएगा, जा तेरा लड़का तुझे घर में मिलेगा। बुढ़िया जो है फौरन घर की तरफ गई, सख्त हैरत में थी, परेशान थी। घर पे गई तो देखा कि जो है दरवाजे के पास जो है उसका लड़का नौजवान जो है खड़ा हुआ, उसको गले से लगा, प्यार किया और हैरान हुई। उसके बाद उसका हाल पूछा तो कहा मैं यहाँ से तो जो है दूसरे मुल्क में था, बाज़ार में जो है सौदा सुलूक के वास्ते निकला था, अचानक एक तेज़ आंधी आई हवा आई और जो है मेरी आँखें बंद हुई, आँख खोला तो जो है मैं अपने आप को इस घर के बाहर पाया। मियाँ शेख इब्राहिम शेखा की ज़ुबान में ये तासीर है कि कोई मामूली बात नहीं है। ये जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजूदा रहा है कि हवा को अपने काबू में करना। इधर ज़ुबान से अदा हुआ, उधर हवा ने जो है उस बच्चे के लड़के को न जाने कितनी मील कितनी दूर था वहाँ से उठाया और लम्हों में जो है उस बुढ़िया के जो है घर के पास ला दिया। मियाँ इब्राहिम शेखा का ये आलम है, सिर्फ जो है उधर ज़ुबान बंदगी में उनसे अदा हुआ था कि जाओ उस फ़कीर से कह दो, तो फौरन जो है बंदगी में शेख इब्राहिम शेखा ने जो है ये कहते हुए कि ख़जाने के मालिक ने जब बकीली नहीं की है वो चाहता है तो मैं क्यों चुप है बकीली करूँ, यानी जो है असल उनका हुक्म है जो यहाँ पर इस ज़ुबान में तासीर ला दी है। बंदगी में उधर जब फरमाया कि जाओ इब्राहिम शेखा से कहो, तो फौरन ये जो कहना था वहाँ पर जो है मियाँ इब्राहिम शेखा में जो है तासीर आ चुकी थी कि जब वो जो कहेंगे वो उसी वक्त पर हो जाए। कहा और उसी वक्त पे जो है अल्लाह ताला ने जो है हवा के ज़रिए से जो है उस बच्चे को जो है जो जवान हो चुका था दूसरे मुल्क में था फौरन उसी वक्त पे जो उस बुढ़िया के जो है घर पर ला दिया। बहरहाल इसी मुकाम से जो है बंदगी में रज़ी अल्लाह तुन जो है अपना दायरा बंदगी मलिक हम्माद रज़ी अल्लाह तुन की जो है सुपर्द करते हैं और आप जो है हज के वास्ते जाते हैं। हज के दरमियान में जो है थोड़े से वाक़ात हैं, अल्लाह चाह तो कल की निशल बयान की जाएंगे, फिर कुछ और वाक़ात आगे के दायरों के हैं इंशाल्लाह अगले निशल बयान की जाएंगे। वाफ़िर।